जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए।
कहा जाता है कि 50 के दशक में जब भी संगीत की कोई महफिल होती थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गज भी मौजूद रहते थे, सबसे आखिर में तलत महमूद को बुलाया जाता था। ये रुतबा था तलत महमूद का। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं या गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल से मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके।
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का,
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का,
अफसाना मेरा बन गया अफसाना।
मानिक प्रेमचंद ने हिंदी फिल्म संगीत पर कई किताबें लिखी हैं, उनमें से एक है तलत महमूद की जीवनी, द वेलवेट वॉइस। तलत की आवाज से उनका फैसिनेशन शुरू हुआ था 1958 में।
मैं कुछ 7 साल का था जब मेरी फैमिली किसी गाड़ी में लौट रही थी रिपब्लिक डे परेड से। उस टाइम रेडियो पे ये गाना बज रहा था, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। ये गपशप कर रहे थे एल्डर्स और जब ये गाना ब्रॉडकास्ट होने शुरू हुआ, इनकी बातें कम हो गई और एक खामोश सा वातावरण बन गया वहां पर। तो एक किस्म का रिस्पेक्ट दिया गया इस गाने को मेरे एल्डर्स ने। दिस वॉज द एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ माई फैसिनेशन फॉर तलत महमूद।
रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे तो जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले छाए।
24 फरवरी 1924 को लखनऊ में पैदा हुए तलत महमूद ने लखनऊ के अदब और तहजीब को आत्मसात कर लिया था। वो जितना मीठा गाते थे उतना ही मीठा बोलते भी थे। तलत महमूद की नातिन सहर जमा एक पत्रकार हैं और मिरर नाउ चैनल से जुड़ी हुई हैं।
द वेरी जेंटल मैनरिज्म्स और लखनऊ की तहजीब तो बहुत ज़्यादा कूट कूट के जैसे उनके अंदर थी, और मगर मिजाज के बहुत जेंटल थे, हसमुख बहुत थे, मजाक बहुत करते थे और बहुत ज़िंदा दिल थे। मैंने तो उनके साथ रिलेटिवली थोड़ा कम वक्त गुजारा है, मेरी अम्मी ने तो पूरा अपना बचपन उनके साथ गुजारा है बॉम्बे में। वो जब छोटे छोटे थे वो उनके स्कूल के कॉमिक्स पढ़ते थे, उनसे ज़्यादा वो आइसक्रीम के शौकीन थे। ही वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड अप एज अ जेंटलमैन, सूटेड बूटेड, वेरी वेल प्रेजेंटेड, वेरी क्रिस्प, एंड ऑफ कोर्स ही लव्ड ट्रैवलिंग। ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज फैंस एंड फॉलोअर्स। आई थिंक उसके एक सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले गायक थे जिन्होंने वर्ल्ड टूर्स शुरू किए, उनसे पहले किसी ने वर्ल्ड टूर्स नहीं किए थे, और उन्होंने ये शुरू किया बिल्कुल एट द पीक ऑफ हिज करियर। आप इमेजिन करिए कि 1950s में उन्होंने अपना फर्स्ट वर्ल्ड टूर किया टू ईस्ट अफ्रीका, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल। उसके बाद इनफैक्ट लता जी ने परफॉर्म किया एंड ही वेंट टू मैडिसन स्क्वायर एज वेल।
तलत महमूद ने संगीत की पढ़ाई लखनऊ के भाटकंडे संगीत महाविद्यालय में की, जिसे पहले मैरिस कॉलेज कहा जाता था। तलत प्रवेश परीक्षा के रिटन टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब उनकी स्वर परीक्षा हुई तो परीक्षक उनका आलाप सुनकर हतप्रभ रह गए और बिना कोई सवाल पूछे तलत महमूद का दाखला कर लिया गया।
इनको कुछ आता तो था नहीं, थैली तो कुछ इनकी थी नहीं, ये तो ऊपर वाले की बाणी लेके आए थे। ये था कि उनको ये जो थियोरी वगैरह होती है, आज भी कई लोग सरगम को नहीं समझते, लेकिन जब आवाज उनकी निकली, जब उन्होंने आलाप छेड़ी तो उन्होंने कहा रे बाप रे ये क्या हो गया।
बाद में तलत ने उसी आलाप को शिकस्त फिल्म के गाने सपनों की सुहानी दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है की शुरुआत में गाया। 40 का दशक शुरू होते होते वो ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से गाने लगे थे। 1941 में वो कलकत्ता चले गए, जहां HMV ने 30 रुपए प्रति गाने पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कलकत्ता में काफी नाम कमाने के बाद तलत महमूद बंबई पहुंचे। आगे की कहानी खुद उनकी जुबानी।
जब मैं बंबई आया हूँ तो यहाँ तो बहुत से लोगों को हमेशा बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन चूंकि मेरा गाना तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला नसरी बेइंतहा पॉपुलर था, तो वो तो फौरन ही आती है, मुझे लोगों ने ऑफर्स देना शुरू किए। लेकिन ये एक सबसे बड़ी शर्त होती थी पहले कि आप पहले गाना रिकॉर्ड करें और हम वो देखें, क्योंकि आप जानते थे ना कि बॉम्बे की इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो वो चीज़ ज़रा कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं थोड़े दिनों इंतजार करता रहा। इस अरसे में अनिल विश्वास साहब ने मुझे मैसेज भिजवाया कि भाई तलत तुम आओ, तुम्हारे लिए गाना तैयार। तो मैं अनिल दा के पास भी नहीं गया और बैठा रहा घर पे, 3-4 दफ़ा उनका मैसेज आया। फिर वो एक दिन जब पता चला कि अनिल दा गाड़ी में बैठे चले आ रहे हैं, मुझसे अगर कहा कि अच्छा था ये क्या तमाशा है, तो मैंने कहा कि अनिल दा सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने मुझे ऐसा डरा दिया, मैं ये सोच रहा था कि शायद आप भी करें। कहले भाई आओ तो देखो, तो अगर गाना तुम्हारे लिए बनाया, दिलीप कुमार के लिए गा रहे हो। अब मैंने जाके ये गाना रिहर्स किया, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो,
दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपना बराया मेहरबाना मेहरबा कोई ना हो।
अपने करियर के शुरुआती दौर में उनकी आवाज में पाए जाने वाले कंपन की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। ये अलग बात है कि यही कंपन, यही लर्जिश आगे चलकर उनके गाने की USP बनी।
वो बोलते भी इसी तरह से थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, उनको सुनने के लिए करीब में आना पड़ता था उनके। आजकल थोड़ा सा डिंग डोंग हो गया है, गिटार बजने लगी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। इनका जो नेचर था दैट वॉज ट्रांसलेटिंग इन टू हिज वॉइस, और बहुत अदबी आदमी थे ये। आई जस्ट डोंट मीन अलिफ बे पे थे पढ़ना लिखना, आई मीन डीप इन टू कल्चर एंड पोइट्री। आपने अगर इनके बारे में कुछ सोचा है, इनकी इनके गानों को अप्रिशिएट किया है, अगर आप उस टाइप का जौक और शौक रखते हैं, तो आपको थोड़े ही वक्त में समझ आ जाएगा कि वन ऑफ द सेंट्रल फीचर्स ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ हिज म्यूजिक इज द गुड पोइट्री इन दोज सॉन्ग्स। दैट्स व्हाई द सॉन्ग्स हैव एंडेड अप सो ब्यूटीफुल। इनको वो रेंज नहीं थी जो मोहम्मद रफी की आवाज में थी, जो ऊपर जाना नीचे आना अनदर एक्सेप्शनल थिंग। इनकी आवाज में वो बैरिटोन नहीं था जो मिसाल के तौर पे हेमंत कुमार की आवाज में था, वो ट्रेबल नहीं था जो मुकेश की आवाज में था। तो अपने वो दायरे में जो घूम रहे थे, ये गजल के सॉफ्ट सिंगिंग के दायरे में, पिच का जो बैंड था, नॉट वेरी हाई पिच नॉट टू लो पिच, उसमें जो ये गा रहे थे वो गजल का काम उम्दा कर रहे थे, और उसमें जो अल्फाज हैं वो क्रिटिकल हुआ करते थे।
तलत महमूद की मन्ना डे से बहुत नजदीकी दोस्ती थी। मन्ना डे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
एक बार मदन मोहन ने बंबई आई मलिका ए गजल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया, जिसमें बंबई की हर बड़ी संगीत हस्ती को बुलाया गया। जैसा कि उम्मीद थी, भोज से पहले संगीत की एक महफिल हुई और सबसे पहले तलत महमूद से माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गजल खत्म हुई, इतनी तालियां बजीं कि मेरे और मोहम्मद रफी के बीचों बीच बैठे किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसा कर कहा, चलिए हम लोग चुपके से भाग निकलें, तलत के फैलाए जादू के बाद अब हम लोगों की कौन सुनेगा।
1962 के भारत चीन युद्ध से पहले जब चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई भारत आए तो वो मुंबई भी गए। वहां कार्यवाहक राज्यपाल मोहम्मद करीम चागला ने उनके सम्मान में एक संगीत सम्मेलन आयोजित किया। थोड़ी देर बाद चू एन लाई ने फरमाइश की कि वो आवारा हूं गाना सुनना चाहते हैं। वहां मुकेश तो थे नहीं, इसलिए तलत से ही अनुरोध किया गया कि वो आवारा हूं गाएं। तलत ने चू एन लाई को निराश नहीं किया।
चू एन लाई आए, मेहमान खुशी, और उनको ये आवारा हूं सुनना था, लेकिन वो इनका गाना भी नहीं था और इनको उसके बोल भी पता नहीं थे, तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मगर उसने कहा हवाला हूँ हवाला हूँ, तो फिर जैसी जैन साहबा उन्होंने कहा भाई कुछ भी आप करो यार, कुछ भी उसमें आप में कुछ बोल डाल दो, ये तो समझेंगे नहीं, लेकिन धुन मत बदलना।
तो पूरा गाना सुनाया या 3 या 4 लाइन गुनगुना दी?
नहीं नहीं, मुखड़ा और अंतरा।
आवारा हूं, आवारा हूं, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
इस सब के बावजूद मात्र 40 साल की उम्र में तलत महमूद के करियर का अंत शुरू हो गया। 40 साल की उम्र में गायक आमतौर से अपने पीक पर पहुंचते हैं, लेकिन 40 की उम्र में तलत का डिक्लाइन शुरू हो गया।
अर्ली बर्नआउट है, इसमें कोई शक नहीं है। दैट यू नो एट 40 यू डोंट फोल्ड अप योर दुकान, कोई भी ऐसा नहीं करता। रफी साहब ने नहीं किया, किशोर ने नहीं किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, आप हेमंत कुमार, जहां पर भी आप देखें, 40 पे यू डोंट क्लोज अप योर शॉप एंड से आई एम रनिंग आउट ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन अर्ली बर्नआउट, टू मेनी ट्रिप्स अब्रॉड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, और उसके बाद इनका थोड़ा दिल भी उठ गया था, बिकॉज काफी कुछ नकल हुआ करती थी और इनको बुलाया जाता था, रिकॉर्ड करवाया जाता था, फिर किसी और से गाने गवाए जाते थे और फिल्मों में लिए जाते थे। उस आदमी से आप रिकॉर्ड करवाओ और फिर दूसरे किसी को दे दो गाने, तो वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे।
जाहिर है जमाना बदल रहा था, संगीत के नए प्रतिमान कढ़े जा रहे थे, शब्दों पर शोर भरा संगीत हावी हो रहा था जिसमें तलत अपने आप को मिसफिट पा रहे थे।
एक चीज वो बहुत अच्छी तरह समझते थे कि उनकी आवाज की जो क्वालिटी है वो सिर्फ कुछ टाइप के गानों के लिए है। व्हेन म्यूजिक चेंज, जब ऑर्केस्ट्रा हैवी हो गया, ही रियलाइज्ड कि उनकी आवाज उन गानों में नहीं ढलती, सो ही ऑल्सो स्टेड अवे फ्रॉम इट। तो उनको वो खुद ही समझ थी कि मेरे आवाज में एक क्वालिटी है जो कुछ तरीके के गानों में अच्छी लगेगी, सो मे बी फॉर हार्ड बीट्स एंड लाउड म्यूजिक में उनकी आवाज नहीं अच्छी लगती, एंड ही रियलाइज दैट वेरी वेल।
9 मई 1998 को पार्किंसन बीमारी से जूझते हुए तलत महमूद ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मानिक प्रेमचंद को अभी तक उनसे अपनी आखिरी मुलाकातें याद हैं।
जब मैं इनको आखिरी 2-3 बार मिला था तो ये बोल नहीं पा रहे थे और थोड़ा सा पार्किंसन वाला इन पे दौर पड़ा था। मैं एक जज्बाती किस्म का इंसान हूँ और वो गालिब ने क्या कहा था कि मुझे मत छेड़, जोशी गिरिया से तूफान उठा दूंगा। मैंने उनसे उस टाइम पे भी बातें करता था और ये हाँ ना करते थे, मुझे समझते थे। आई यूज टू फील बैड फॉर अ पर्सन हु नॉट ओनली स्पोक वेल बट सैंग ब्यूटिफुली, और अब मैं उनके सामने बैठा हूँ, समबडी हु आई कांट प्रेज इनफ, वो बोल नहीं पा रहे, और मेरा कलेजा बैठा जाता था कि ये काश की उनकी तकलीफ मुझे आ जाती थी। मेरे अंदर जो है मेमोरीज ये नहीं जा रही।
मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना।
आपको हम कैसे भूल सकते हैं तलत साहब। रेहान फजल, BBC दिल्ली।